पिछले अध्याय में आपने देखा कि आर्यन जय के लिए सरप्राइज लाया। सानवी आर्यन के घर में जय की देखभाल के लिए रुक जाती है, पर उसे एक्स्ट्रा पैसे देने की बात पर गुस्सा आता है। दूसरी तरफ आलिया इंद्र के पेंटहाउस में आकर रहने की बात करती है। फिर सानवी जय और आर्यन को खेलते हुए देखती है और आर्यन के नरम स्वभाव को देखकर हैरान होती है। डिनर के दौरान सानवी के पालक पनीर बनाने पर जय उसे आर्यन से बचाता है। कृति रिया से सानवी और आर्यन के अफेयर की बात करती है। बाद में जय के कहने पर आर्यन सानवी को फिल्म देखने के लिए रुकने को कहता है और वो मान जाती है। अब नेक्स्ट, आर्यन चाहता था कि सानवी चली जाए क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर जय के चेहरे को देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, प्लीज़ थोड़ा रुक जाओ, ड्राइवर तुम्हें और जय दोनों को साथ ही छोड़ देगा। वो घर जाना चाहती थी, लेकिन तभी जय उसकी टांगों से लिपट गया। उसकी मासूम जिद देखकर वो ना नहीं कह पाई और हामी भर दी। जय की डिमांड पर थोड़ी ही देर में लॉन में एक स्क्रीन लगा दी गई। तीनों ने मिलकर एक कार्टून फिल्म लगाई। जय सानवी की गोद में ही बैठा था, आर्यन चुपचाप देख रहा था। इन दोनों के बीच अब कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। फिल्म देखते देखते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। उन्होंने साथ में हंसते हुए बहुत अच्छा वक्त बिताया। फिल्म देखते देखते जय को वॉशरूम जाना था। उसने मामू से कहा, मुझे बाथरूम जाना है। मामू बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूं? जय ने सिर हिलाया, नहीं मैं चला जाऊंगा, मगर हाँ अगर मैं लौटने से पहले दीदी को कुछ कहा तो देख लेना। उसे डर था कि उसके जाते ही आर्यन कहीं सानवी को डांटना कर दे। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया। बच्चों के साथ सच में हम भी बच्चे बन जाते हैं। आर्यन जो सामने बैठकर कार्टून मूवी देख रहा था, बगल वाली चेयर पर बैठी सानवी की तरफ मुड़ा और बोला, सही कह रही हो तुम, वैसे तुम्हें खाना बनाने का शौक कैसे हुआ? असल में आर्यन सानवी के बारे में जानना चाहता था। उसे जिज्ञासा हुई थी कि वो कैसी है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपनी मॉम से, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जब मैं छोटी थी तो जब भी मम्मी खाना बनाती मैं हमेशा उनके साथ रसोई में रहती थी। फिर बड़ी हुई तो सोचा कि प्रोफेशनल तौर पर काम करूं, इसीलिए मैं ट्रेनिंग ले रही हूं। फिल्म खत्म होने के बाद ड्राइवर राम जय को लेने आ गया। आर्यन ने सहजता से कहा, सानवी को भी छोड़ दो। नहीं मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, यहाँ से तो मिल जाएगी, सानवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो किसी से कोई फेवर लेना नहीं चाहती थी। वो अलविदा कहकर चली गई। सानवी और जय के जाने के बाद आर्यन पानी लेने के लिए किचन में आया। वहां उसे शेल्फ पर कुकीज का एक बॉक्स दिखा जो सानवी ने जय के लिए बनाया था। उसने उनमें से एक कुकी ट्राई की, सचमुच उसे टेस्टी लगी। जैसे ही वो लिविंग रूम से होकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, उसकी नज़र पड़ी कि जय के खिलौने वैसे ही बिखरे पड़े थे। कमरे में रखी टेबल पर मैगजीन इधर उधर फैली हुई थी और सोफे पर भी अस्त व्यस्त पड़ी थी। चाहे सानवी और जय मिलकर लिविंग रूम की सफाई कर चुके थे, मगर फिर भी जय ये सब ऐसे ही छोड़ गया था। ये सब देखते हुए आर्यन ने अपना सिर हिलाया। उसे पता था कि जय और सानवी दोनों का काम है। वो ठंडी सांस लेता हुआ ऊपर चला गया था। बहुत दिनों से अयान अस्पताल में भर्ती था, आज उसे घर आना था। उसके आने की खबर से ही नावेद राजा साहब और उनकी बेगम बहुत खुश थे। घर में उसके स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, मगर साथ ही इस बात की भी चर्चा थी कि वो पहले से ही इतना गुस्से वाला था और अब जब वो बीमार होकर लौट रहा है तो शायद और भी चिड़चिड़ा हो गया होगा। किसी को मालूम नहीं था कि वो आकर क्या करेगा, इसी वजह से बेगम साहिबा ने जोया को अपने कमरे में बुलवाया था। असल में बेगम साहिबा ने अपनी दोनों बड़ी बहू ये सलाह दी थी कि हो सके तो जोया अयान के सामने ना आए, यही अयान की सेहत और घर के माहौल के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वे दोनों भी घर में किसी तरह का क्लेश नहीं चाहती थीं। ये बात सबको पता था कि आम जया को देखकर किस कदर भड़क जाता था। बेटा तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर तुम अयान के सामने मत आना, बेगम साहिबा ने कहा। वो जानती थी कि इस बात से जोया को बुरा लगेगा। ऐसा नहीं था कि उन्हें जोया से प्यार नहीं था, मगर इस टाइम उन्हें सिर्फ अयान की फिक्र थी। मैं जानती हूँ, जोया ने शांत स्वर में कहा, मैं तो सोच रही हूँ कि अब हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ। मैं अभी जाना चाहती थी लेकिन तब आपने रोक लिया था। सच कहूँ तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, जोया के जो मन में था उसने साफ साफ कह दिया, क्योंकि जोया भी अयान से नफरत करती थी। बेटा इस बारे में हम फिर बात करेंगे, मगर फिलहाल तुम मुझसे जरा दूर ही रहना, और अगर वो तुम्हें कुछ कह भी दे तो पलटकर जवाब मत देना, बेगम साहिबा ने समझाया। अयान के घर आने में थोड़ी देरी हो गई थी, असल में वे लोग सुबह ही लौटने वाले थे, मगर डॉक्टर देर से आया और डिस्चार्ज भी देर से हुआ, इस वजह से दोपहर के समय वे घर पहुंचे। जोया अयान के सामने नहीं आना चाहती थी, मगर हमारे सोचने से क्या होता है। जोया उस वक्त किचन में थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अयान अब घर में आ चुका है। अयान अपने दोनों भाइयों के साथ हॉल में दाखिल हुआ। अयान अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा, उसके बड़े भाई ने धीरे धीरे समझाया। देखो अब पहले वाली हरकतें मत करना, फिर से मत शुरू करना, सिर्फ शराब की बात नहीं है, तुम जानते हो नशा और शराब ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम अपना नहीं जानते कि कल को खुद पर क्या बीतेगी। मैं चाहता हूँ तुम खुद भी चैन से जियो और हमें भी चैन से जीने दो, दोनों भाई उसे समझाते हुए हॉल के भीतर आ रहे थे। अयान आराम से चलता हुआ जीन्स की जेब में हाथ डाले हल्के कदमों से उनके साथ आगे बढ़ रहा था। वे लोग सोफे के पास आ ही पहुंचे थे कि तभी जोया अचानक किचन से बाहर आई, क्योंकि जोया को पता नहीं था कि वे लोग घर आ चुके हैं। जोया की नज़र जैसे ही आयान पर पड़ी वो एक पल को ठिठक गई। उसका इरादा सामने आने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने दूर से ही हल्के से सलाम किया और तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसे पछतावा था कि जो उसे मना किया गया था उसने वही किया। आयान, जो सोफे पर बैठने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसकी नज़र जाती हुई जोया पर टिक गई। जैसे ही उसने उसे देखा उसके भीतर कुछ अजीब सा हुआ, मानो किसी ने उसके दिल पर सीधा दस्तक दी हो। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से, बहुत तेजी से धड़कने लगा है, हजार की रफ्तार से। उस पल आयान के लिए हॉल, उसके भाई, बातें सब गायब हो गए, सिर्फ जोया रह गई। वो उसे पीछे से देख रहा था। उसकी चाल में एक सादगी थी जो आयान की नजरों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल चलते चलते हल्के हल्के हिल रहे थे और हर हलचल मानो आयान के दिल में गूंज रही थी। उसकी पीठ पर डला हुआ हल्का सा दुपट्टा चलते समय उसकी कमर के पास लहराता था और आयान की नजरें उसे हट नहीं पा रही थी। आयान को महसूस हुआ कि जैसे उसका दिल खिंच रहा हो और वो चाहकर भी नजरें मोड़ नहीं पा रहा हो। उसके मन में कोई नाम नहीं था इस एहसास का, मगर कुछ उसके भीतर उतर रहा था। उसके चलने का अंदाज, उसके बालों का लहराना, उसके कपड़ों की हल्की खुशबू जो हवा के साथ फैल रही थी, सब कुछ। जोया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था फिर किसी का ध्यान उसे पड़ जाए, मगर मालूम नहीं ऐसा क्या था जो आयान को बांध गया। कैसे हो आयान बेटा? उसके अब्बा और अम्मी उसके कमरे से निकलकर उसके पास आ चुके थे। अम्मी की आवाज़ सुनते ही आयान जैसे अचानक होश में आया। मैं ठीक हूँ मम्मी, उसने कहा और सीधे अपनी अम्मी के गले लग गया।
अम्मी के चेहरे पर खुशी फैल गई, क्योंकि ऐसा तो यहाँ कभी हुआ ही नहीं था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि शायद वो बहुत दिनों बाद ठीक होकर घर आया है, इसलिए इतना अपनापन दिखा रहा है। इसके बाद वो बड़े प्यार से अपने अब्बा से मिला, फिर अपनी भाभियों, भतीजों और बाकी घर वालों से भी वो बहुत प्यार से मिला। कुछ देर बाद वो सोफे पर बैठ गया और सभी लोग उसके पास आकर बैठ गए। सब उससे बातें करने लगे और वो चुपचाप आराम से उनकी बातें सुनता रहा। आहे, आयान के दिल में ये फीलिंग क्यों उठी थी? जिस लड़की से वो इतनी नफरत करता था, अचानक से वो उसे इतनी अच्छी लगी। क्या आर्यन के मन में सानवी के लिए कोई भावना उठने लगी है? प्लीज़ मेरी सीरीज़ पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग की। देखा आपको मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और व्यू देना याद रखें।